एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया, सताया गया, मेरा यीशु मसीह सब सहता गया। तड़पाया गया, प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, निर्दोष था दोष लगाया गया। प्रश्नों पर प्रश्न पूछा गया, निर्दोष था दोष लगाया गया मेरा प्रभु तुझे ना कहा कांटों का ताज पहनाया गया मेरा प्रभु कुछ ना कहा कांटों का ताज पहनाया गया तड़पाया गया सताया गया मेरा यीशु मसीह सब सहता गया तड़पाया क्रूस पर वो टंगाया गया पापों से हमारे वो रंगाया गया श्रापित क्रूस पर वो टंगाया गया पापों से हमारे वो रंगाया गया तीसरे जिलाया गया पिता के दही ने बिठाया गया तीसरे दिन फिर जिलाया गया पिता के दही ने बिठाया गया तड़पाया गया सताया गया मेरा यीशु मसीह सब सहता गया तड़पाया गया सताया गया मेरा यीशु मसीह सब सहता
गया। समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। मैं खुश हूँ कि आज मैं फिर से आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं तो यह धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। हम सबों के संग हो जब हम तेरे वचन को सुनते हैं और सीखते हैं। मेरे संग हो पिता, मुझे तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर और चला। तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे महिमा के लिए तेरा इच्छा अनुसार लोगों को बतला सकूं और जितने भी तेरे लोग सुनने वाले हैं उनको तो आशीष दे, तेरे वचन को सुनकर आशीष पाने सके और तेरे नजदीक आने सके और तेरा महिमा करने सके। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। आज का मेरा संदेश का शीर्षक है सेवा करने आया। यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया उसको हम लोग आज देखेंगे। यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा करने के लिए आया। यरूशलेम के एक घर के कोठे पर मसीह अपने चेलों के साथ भोजन के लिए मेज के आसपास बैठा था। वे सब लोग फसह पर्व मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। मुक्तिदाता की यह तीव्र इच्छा थी कि इस बार पर्व को केवल अपने शिष्यों के साथ मनाए। वह जानता था कि उसकी घड़ी आ पहुंची है। वह स्वयं ही प्रायश्चित का मेमना है और जिस तरह से फसह पर्व के दिन बध हुए मेमने का मांस खाया जाता था उसी तरह से उसे भी बलि चढ़ना है। वह लगभग उस दुख के कटोरे को पीने वाला था। कष्ट उठाने का अंतिम झोंका आने ही वाला था, परंतु अभी जो कुछ घड़ियां बाकी रह गई थी उन्हें वह अपने प्रिय चेलों की भलाई के लिए बिताना चाह रहा था। मसीह अपने पूरे जीवन भर निस्वार्थ दूसरों की सेवा करता रहा। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। यह हम पाते हैं मत्ती 20 का 28 में। प्रत्येक काम को करते समय उसकी आदर्श यही सीख होती थी, परंतु चेलों ने अभी तक उस पाठ को नहीं सीखा था। इस अंतिम फसा पर्व के भोज के समय यीशु अपनी उस सीख को एक जीवित दृष्टांत देकर दोहराया, जो उनके मनों और हृदयों में सदा सदा के लिए एक गहरा छाप छोड़ गया था। यीशु और उसके शिष्यों के बीच का वार्तालाप बहुत ही मधुर और शिष्टप्रद होता था, और सभी चेले ऐसे अवसर को बहुत अच्छा मानते थे। फसा पर्व का भोज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, परंतु इस बार यीशु कुछ चिंतित सा दिखाई पड़ रहा था। मानो उसके हृदय पर कोई बहुत भारी बोझ है, जो उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी प्रकट कर रही थी। जब वह चेलों से अटारी में मिला तो उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि कोई बात ऐसी है जो उसके मन को उद्वेलित कर रही है। यद्यपि वे लोग उसके कारण को नहीं जानते थे, फिर भी उसे दुखी देखकर उनकी सहानुभूति उसके साथ थी। जब सब लोग मेज के चारों ओर इकट्ठे बैठ गए तो बड़ी उदासी भरे लहजे में यीशु ने कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले या फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। मसीह जानता था कि समय आ गया है कि वह इस संसार से विदा लेकर अपने पिता के पास चला जाए। इस पृथ्वी पर वह जिनसे प्यार करता था अंत तक करता रहा। अब इस समय वह क्रूस की छाया में रह रहा था और उसकी पीड़ा उसके हृदय को छलनी कर रही थी। वह जानता था कि उसके साथ विश्वासघात करके उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा। उसे मालूम था कि एक खूनी और महापापी को जिस प्रकार का मृत्यु दंड दिया जाता है, उसी प्रकार से उसे भी दिया जाएगा। जिन्हें बचाने के लिए वह आया था उनके द्वारा उस पर अत्याचार किया जाना और अपमानित किया जाना, इन सब बातों को वह जानता था। वह जानता था कि कितना बड़ा बलिदान उसे करना है, परंतु बहुतों के लिए तो वह व्यर्थ ही होगा। जो कुछ होने वाला था उन सब को जानते और देखते हुए अपने अपमान और कष्ट के विषय में सोच कर यीशु बहुत उदास था। परंतु जब उसने उन बारहों पर नजर की जो उसके अपने थे और उसके दुख और पीड़ा के समय के समाप्त हो जाने के बाद इस संसार में संघर्ष करने के लिए अकेले पर जाएंगे, जो कष्ट वह स्वयं उठा रहा था अपने शिष्यों के विषय में भी वैसा ही सोच रहा था। इस समय वह अपने विषय में नहीं बल्कि चेलों के विषय में सोच रहा था। उसके मन की गहराई तक चेलों की चिंता लगी हुई थी। इस अंतिम शाम को अपने चेलों के साथ रहकर यीशु उनसे बहुत कुछ कहना चाहता था। जो कुछ शिक्षा वह उन्हें देना चाहता था, यदि वे लोग उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते तो उस हृदय के आघात और निराशा तथा अविश्वास से बच सकते थे। परंतु यीशु ने देखा कि जो कुछ वह कहना चाहता था उसे वे सहन नहीं कर पाएंगे। जब उसने उनके चेहरों को देखा तो चेतावनी और तसल्ली देने वाले शब्द उसके होठों पर ही अटक गए। खामोशी के कुछ क्षण बीत गए। ऐसा लगा कि यीशु प्रतीक्षा कर रहा है। इस खामोशी से चेले भी परेशान थे। एक और मसीह की उदासी और कष्टपूर्ण दशा को उसका चेहरा बता रहा था, तो दूसरी ओर ये चेले आपस में एक दूसरे को डाह और कलह की दृष्टि से देख रहे थे। मसीह के सामने ही शिष्यों के बीच यह वाद विवाद भी हुआ कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। यह देखकर मसीह को बड़ा दुख हुआ और उसके हृदय को चोट पहुंची। चेले लोग अभी भी अपने उस विचार से चिपके हुए थे कि मसीह दाऊद के सिंहासन पर बैठकर इज़राइल पर राज स्थापित करेगा। अपने अपने मनों में वे अभी भी सोच रहे थे कि सबसे बड़ा दर्जा किसे मिलेगा। उन्होंने अपने लिए अनुमान लगा रखा था कि कौन क्या बनेगा। अपने किसी भाई को अधिक योग्य समझने के स्थान पर स्वयं अपने आप को दूसरे से अधिक योग्य समझ बैठ रहे थे। याकूब और यहूना द्वारा यह विनती किए जाने से कि अपने राज्य में एक को दाहिनी तरफ और दूसरे को बाएं तरफ बैठाए, दूसरे चेलों के रोष को बढ़ा दिया था। ये दोनों भाई अपने लिए उच्चतर स्थान पाने की इच्छा को प्रकट करके उन दसों की एकता में खतरा पैदा कर दिए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी योग्यता को कम करके आंका गया है और उनके गुणों का सम्मान नहीं किया गया है। यहूदा तो याकूब और यहूना पर बहुत ही नाराज था। जब चेले लोग भोज कक्ष में प्रवेश किए तो उनका मन क्रोध से भरा हुआ था। झट से यहूदा मसीह के बाएं आकर बैठ गया और यहूना मसीह के दाएं हाथ बैठा। यहूदा ने फैसला कर लिया था कि जो भी उच्चतम स्थान होगा उसे वही लेगा और वह स्थान मसीह के बाद नंबर दो का होगा। यहूदा तो एक विश्वासघाती था। उनके वाद विवाद का एक कारण और पैदा हो गया था। पर्व के समय कि यह एक रीति होती थी कि भोजन करने से पहले नौकर आकर मेहमानों के पैर धोते थे और इस उद्देश्य के लिए वहां पर पूरा प्रबंध कर लिया गया था। पैर धोने के लिए पानी का मटका, चिलमची, तौलिया सभी कुछ तैयार रखा था, परंतु वहां पर कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए यह काम चेलों को स्वयं करना था। सभी चेले अपने आप को दूसरे से छोटा बनाने के लिए तैयार नहीं थे। सभी ने ऐसा व्यवहार दिखाया कि जैसे उन्हें करने के लिए वहां कुछ भी नहीं है। अपनी चुप्पी द्वारा उन्होंने यह प्रकट किया कि वे अपने आप को दास नहीं बनाएंगे। चेलों ने एक दूसरे के पांव को धोने के लिए कोई हरकत नहीं दिखाई। थोड़े समय तक यीशु इंतजार करता रहा कि देखे कि वे लोग क्या करते हैं और तब वह ईश्वरीय गुरु अपने स्थान से उठा, अपने चोंगे को उतार दिया ताकि उसके काम में कोई रुकावट ना पड़े और एक अंगोछा लेकर उसे अपनी कमर से बांध लिया। चेलों ने आश्चर्य भरी नजरों से उसकी हरकत को देखा और सांस रोके इंतजार करने लगे कि अब आगे वह क्या करता है। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। मसीह के इस व्यवहार ने चेलों की आंखों को खोल दिया। उनका मन शर्मिंदा से भर गया। बिना कुछ कहे ही मसीह की ताड़ना को उन्होंने समझ लिया और सब मिलकर उनके मनों में एक नई ज्योति जाग उठी थी। फसह पर्व से पहले यहूदा फरीसियों और शास्त्रियों से दूसरी बार मिल चुका था और उसने उन लोगों के साथ गहरा संबंध बनाए रखा था ताकि यीशु को उनके हाथ में सौंप दे। फिर भी वह चेलों के साथ इस प्रकार घुल मिल कर रह रहा था जैसे कि उसने कोई गलती ना किए हो। केवल यीशु ही उसके उस भेद को पढ़ सकता था और उसने उसे पढ़ लिया था। जिस प्रकार से उसके मन पर यरूशलेम की बर्बादी के कारण एक बोझ था और वह रो पड़ा था, वैसे ही यहूदा के लिए वह महसूस कर रहा था। उसका मन रो रहा था कि मैं कैसे तुझे छोड़ दूं। उसके प्रेम के दर्द को यहूदा ने अनुभव किया। जब मुक्तिदाता के हाथ उसके धूल भरे पांव को धो रहे थे और फिर अंगोछे से पोंछ रहे थे, यहूदा का हृदय इतना पिघल गया कि वहीं उसी समय अपने आप को वह कबूल कर ले, परंतु उसने अपने हृदय को विनम्र नहीं किया। उसने अपने हृदय को पश्चाताप करने की जगह कठोर बना लिया। यीशु एक एक करके इसके बाद दूसरे चेलों का पैर धोने आ रहा था। यहूदा ने मेज पर मसीह के बगल में बैठने और पहला स्थान पाने की कोशिश किया और मसीह ने एक दास के रूप में पहले उसी के पैर को धोया। और जिस यहूना के लिए यहूदा के मन में सबसे अधिक कड़वाहट थी उसके पैर उसने सबसे बाद में धोया। यहूना इस बात को अपने में नहीं लिया। जब चेले मसीह के उस कार्य को देख रहे थे तो उनका हृदय बहुत प्रभावित हुआ। जब पतरस की बारी आई तो उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? मसीह की इस दीनता ने पतरस के हृदय को झकझोर दिया था। उसे यह सोचकर बहुत ही शर्म आई कि कोई चेला इस काम को नहीं कर रहा था, कोई चेला इस काम को नहीं किया। मसीह ने पतरस से कहा, जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस यह देखकर सहन नहीं कर पाया कि उसका गुरु, जिसे वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में मान रहा था, एक दास का कार्य करे। उसका संपूर्ण मन इस दीनता के विरुद्ध हो गया था। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मसीह इसी उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आया था। बहुत ही आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ पतरस ने कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। बड़ी सलीनता के साथ मसीह ने पतरस से कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। इस बात पर कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, पतरस ने संपूर्ण रूप से अपनी इच्छा और गर्व को मसीह के चरणों में समर्पित कर दिया। वह मसीह से अलग होने की बात को सोच भी नहीं सकता था। यह तो उसके मर जाने के समान था। पतरस ने कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। ये शब्द शारीरिक शुद्धता से बढ़कर आत्मिक शुद्धता से संबंध रखते हैं। पहले पतरस यीशु से अपना पांव धुलाना नहीं चाह रहा था, पर पांव धुलाना उसके मन और उच्च शुद्धता को पाने को दर्शाता था। इसीलिए अब पतरस कह रहा है, मेरे पांव केवल नहीं पर हाथ और सिर को भी धोइए। प्रभु ने कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के अलावा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वह शुद्ध है, वह बिल्कुल शुद्ध है। जब मसीह चेलों के पैरों को धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर आकर बैठ गया, तब उसने उनसे कहा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। मसीह अपने शिष्यों को समझाना चाह रहा था कि यद्यपि उसने पांव धोए हैं, परंतु इससे उसके अपने सम्मान में कोई कमी नहीं हुई है। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। और वास्तव में इतना महान होते हुए भी उसने सेवा भाव को अपने अनुग्रह से सम्मानित किया। मसीह से बढ़कर किसी को भी सम्मान प्राप्त नहीं था, फिर भी वह इतना झुक गया कि दास के कर्तव्य को पूरा किया, ताकि उसके लोग खुदगर्जी के कारण, जो कि प्राकृतिक हृदय में रहती और अपनी खुद की सेवा चाहती है, कहीं गलत मार्ग पर ना चले जाएं। स्वयं मसीह ने दीनता का आदर्श प्रस्तुत किया था। वह नहीं चाहता था कि इस महान विषय को मनुष्य पर छोड़ दे। यीशु जिसकी सेवा टहल सबको करना चाहिए, वह सबका दास बनकर आया, और क्योंकि उसने सबकी सेवा की थी, इसलिए एक बार फिर उसकी सेवा और सम्मान सभी लोगों द्वारा किया जाएगा, और जो लोग उसके ईश्वरीय गुणों के भागीदार होंगे और उधार पाए हुए लोगों को देखकर आनंदित होंगे, वे मसीह के निस्वार्थ सेवा भाव को अपनाएंगे। इन सब बातों का सार मसीह के इन शब्दों में प्रकट किया गया है, मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। इस इकाई को स्थापित करने का मूल उद्देश्य यही था। आगे फिर मसीह कहता है, तुम तो ये बातें जानते हो, यदि तुम उस शिक्षा के उद्देश्य को समझ गए हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। प्यारो भाइयों और बहनों, यीशु मसीह हमारे बीच में आया, हमारे बीच में जीवन यापन किया, हमारे लिए उदाहरण दिया, हमारे लिए नमूना ठहराया है कि वह इसलिए आया ना कि लोग उसका सेवा टहल करे, पर वह दूसरों की सेवकाई करे। हमें यही सिखाता है, हम जब इस दुनिया में जीते हैं हम नम्र बने और दूसरों की भलाई करें, दूसरों की सेवा करें। यही यीशु मसीह का चरित्र है। यदि हम यीशु के पीछे चलते हैं हम नम्र होंगे और दूसरों की भलाई करेंगे, दूसरों की सेवकाई करेंगे। यही हमें यीशु मसीह के राज्य में पाए जाने के लिए तैयार करेगा। आइए हम परमेश्वर से शक्ति मांगे, परमेश्वर से उसका आत्मा का शक्ति मांगे कि हम उसके पीछे चलने वाले बन सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हमें तेरे पीछे चलने के लिए मदद कर, हमें यीशु मसीह का नमूना को पीछा करने के लिए मदद कर पिता, हमें तेरा पवित्र आत्मा का शक्ति दे और हम सबों के मनों को तेरा आत्मा से छू, ताकि हम यीशु मसीह के चरित्र के समान बने, हम नम्र बने और लोगों की सेवकाई करें और तेरे राज के लिए हमें तैयार कर पिता। इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।